ओम शांति। आज प्रातः से ही हम सब परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के संस्मरण सुन रहे हैं और दादी जी ने किस प्रकार से अपनी संपूर्णता की मंजिल तय की, उसका आधार क्या था, वो भी हम सब ने सुना और कल भी सुनेंगे। जब भी हम सब संपूर्णता की बात करते हैं, कर्मातीत अवस्था जिसे हम सबको भी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में साकार ब्रह्मा बाबा की तस्वीर सामने आ जाती है और साथ ही साथ शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा के द्वारा जो कहा और परम आदरणीय दादी जी ने उसे करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के रथ थे, आधार शिव बाबा उनका ले करके ज्ञान सुनाते थे। तो कई बार बुद्धि में आता है उन्होंने तो उन्हें तो डबल इंजन, इसलिए संपूर्णता को प्राप्त किया। वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही साथ हमारी मीठी दादी जी ने भी कैसे इतने बड़े यज्ञ का संचालन किया सफलतापूर्वक बाबा के बाद, और इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो हम सबके लिए बहुत बहुत ही प्रेरणादायक है। दादी जी ने भी बाबा के अंग संग रहकर इस अवस्था को प्राप्त किया, वो भी आज हम सब ने सुना और कल भी सुनते रहेंगे। मुझ आत्मा को भी ये सौभाग्य मिला है कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, और केवल रहने का ही नहीं लेकिन उन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी 1969 जब बाबा अव्यक्त हुए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, फरिश्ता बन गए, उनको अपनी आंखों से देखने का भी परम सौभाग्य हमें मिला है, जो कि आज कुछ हम आपके सम्मुख शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब का भी लक्ष्य कर्मातीत बनने का है। तो वैसे तो इस ईश्वरीय ज्ञान में लगभग 1962 में आना हुआ और साकार बाबा से 1969 तक कई बार मिलना हुआ, दिल्ली में भी मिलना हुआ, कानपुर में भी मिलना हुआ और साथ साथ मधुबन में तो होता ही था, लेकिन मैं केवल उन अंतिम दो दिनों का ही विशेष वर्णन करना चाहूँगा जब बाबा ने उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। बाबा हमेशा कहा करते थे और हम सब मुरलियों में अभी भी पढ़ते हैं कि बच्चे अपने जीवन कहानी को लिख करके दो, और शुरू में बाबा कहा करते थे जब हम आए थे यहाँ 1962-63 में, बच्चे कर्मणा से कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, हाँ मनसा में तूफान तो अंत तक आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे बाबा सूक्ष्मता की ओर सबको लेते जा रहे थे और अंतिम कई मुरलियों में बाबा ने कहा कि बच्चे, सब बच्चों को संबोधित करते हुए कि अगर वाचा से भी किसी को दुख दिया तो दुखी हो मरेंगे, और मंशा में भी अगर कोई संकल्प आए, यहाँ तक कि वृत्ति के अंदर और स्वप्न के अंदर भी, उनका भी हिसाब किताब बनता है। वो भी जैसे आत्मा को जो है संपूर्णता की दिशा में जाने से रोकते हैं। अंतिम दो दिनों में हमने क्या देखा कि जब भी बाबा के सम्मुख गए, पहले तो जाते थे, बाबा से टाइम लेते थे, मिलते थे, बाबा से कोई प्रश्न होता था पूछते थे, बाबा उत्तर देते थे। लेकिन उन अंतिम दो दिनों में लगभग 6-7 बार मिलना हुआ, मधुबन में, पांडव भवन में। तो हम अनुभव करते थे, जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, और दृष्टि दे करके जैसे मन के भाव को पढ़ लेते थे, और बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि बाबा प्रश्न भी बता देते थे, मन में क्या चल रहा है हमारे, बिना एक अक्षर बोले भी, और उसका समाधान भी दे देते थे। एक बार, दो बार, तीन बार, इन दो दिनों में जब 6-7 बार हुआ, बड़ा आश्चर्य होता था। बाबा तो कहते हैं मैं तो जानी जाननहार नहीं हूँ। शिव बाबा भले जानी जाननहार है, ब्रह्मा तो साकार में है, ब्रह्मा को तो लिख करके देना है जीवन कहानी या बताना है, लेकिन इन दो दिनों में हमने जो अनुभव किया, कैसे मन के भाव को बाबा पढ़ लेते थे, ये तो हमें लगा कि ये कर्मातीत अवस्था की एक निशानी है। क्योंकि गायन है मन जीते जगत जीत, जब कर्मातीत संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गए, जगत जीत बन गए लगभग, तो अपने मन के भाव, अपने मन के संकल्पों के ऊपर जो संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है, वो ही दूसरों के संकल्पों को पढ़ सकता है। तो बाबा ने अपने मन के संकल्पों पर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी, मन जीते जगत जीत हो गए थे, कि जो भी सम्मुख आता था बस वो उसके मनोभावों को पढ़ के उसका समाधान कर देते थे। बड़ा ही आश्चर्य लगता था। हमने बाद में पूछा अपने वरिष्ठों से, बड़ी दादी जी से, दीदी से, तो बड़ा अच्छा उन्होंने उत्तर बताया कि देखो जैसे पानी होता है निर्मल, हलचल नहीं होगी तो उसमें हम अपनी छवि भी देख सकते हैं, अपनी सूरत स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा कंकड़ भी फेंक दो, उसमें लहरें पैदा होंगी, उसमें हम अपनी मूरत सूरत को नहीं देख सकते। ऐसी हमारे मन के अंदर भी कोई भी संकल्प, भले विकारी संकल्प, व्यर्थ संकल्प न भी हो, लेकिन कोई भी अगर संकल्प होता है, संकल्पों रूपी लहरें होंगी, तो हम दूसरे के संकल्पों को यथार्थ रीति से पढ़ भी नहीं सकते और उसका समाधान भी नहीं कर सकते। तो एक तो हम सब बच्चों को भी दादी जी के इस पुण्य तिथि पर, और हमने देखा लगभग यही स्थिति जैसी दादी जी की भी थी लगभग, और किस प्रकार से दादी जी के सम्मुख जाते थे, बस दादी जी बोलते तो नहीं थे, लेकिन उनके नयन चैन से ऐसा प्रकट होता था कि जैसे दादी सब मनोभावों को पढ़ रहे हैं, और कभी कभी यथासंभव उसका उत्तर भी देते थे। तो एक तो हम सबको भी ये पुरुषार्थ करना है कि अपने मन के संकल्पों के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा बच्चे अभी तक विकारी संकल्प नहीं आते बच्चों को, विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी भी व्यर्थ संकल्प आते हैं। कुछ दिन पहले गुलजार दादी जी भी क्लास करा रहे थे, बता रहे थे कि आज के संदर्भ में व्यर्थ संकल्प भी क्या है। यही व्यर्थ नहीं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया, कोई तनाव में है, अपमान की बात कह दी, संकल्प विकल्प चल रहे हैं। आज के संदर्भ में व्यर्थ संकल्प वो भी है कि यदि हम योग लगाने बैठते हैं और योग की जगह अगर सेवा के संकल्प आ गए तो वो भी जैसे व्यर्थ की श्रेणी में गिना जाएगा, क्योंकि उन सेवा के संकल्पों से विकर्म तो भस्म होंगे नहीं और विकर्मों का बोझा तो बहुत है आत्मा के ऊपर। इसीलिए बाबा ने ये प्राप्त स्थिति प्राप्त करके दिखाई, जिसका हमने स्पष्ट रीति से ये अनुभव किया कि मन जीते जगत जीत। दूसरी बात हमने देखी 18 जनवरी की सुबह बाबा क्लास में आए और हमेशा की तरह बाबा ने संदली पर बैठे स्थान ग्रहण किया, लेकिन उस दिन बाबा ने पूरा योग ही कराया। बार बार बाबा को होता था जब योग पूरा हो तो बाबा मुरली चलाए, ब्रह्मा बाबा को जैसे ये हो, लेकिन शिव बाबा को जैसे ये प्रेरणा हो, नहीं आज मैं बच्चों को सर्वशक्तियों से भर दूं। तो बस बाबा थोड़ा गला साफ करते थे तो हम लोगों को ये आभास होता था अब बाबा मुरली चलाएंगे, हम लोग पेन डायरी लेके तैयार होते थे, फिर बाबा योग कराने लगते थे। इस तरह कई बार हुआ और पूरे लगभग पौना एक घंटे तक बाबा ने उस दिन योग ही कराया और बाद में बच्चों को याद प्यार देके चले गए। ये 18 जनवरी 1969 की सुबह की बात है, क्लास के समय की बात। खैर वो बाबा सारा बच्चों को ये कई बार संकल्प उठा आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन फिर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, चलो बाबा ने शक्तियों से तो संपन्न किया सबको। एक एक बच्चे को बाबा ने काफी समय तक दृष्टि दी, हम भी सम्मुख बैठे हुए थे और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा से बहुत बहुत समय तक दृष्टि लेने का। फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देके चले गए, लेकिन बाबा को जैसे पूर्वाभान हो गया था, बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं अगर कर्मातीत अवस्था हुई और तुरंत शरीर छोड़ दिया तो क्या लाभ, उस अवस्था का आनंद तो नहीं लिया। तो इसलिए बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त तो कर लिया था और उसके आधार पर बाबा को भान ऐसा प्रतीत होता है जैसे हो गया था कि हाँ आज जैसे बाबा का ये साकार में अंतिम दिन है। तो इसलिए बाबा ने यीशु दादी को भी आभास दिया, आज जितने पत्र लिखने हो वो पत्र लिखवा लो, जो जो काम पेंडिंग हो रहे हुए हो वो काम पूरे कर लो, आदि आदि करके। और इस तरीके से बाबा ने सारे दिन भर वो कार्य जो भी निपटाने थे और निपटाए, और साथ साथ बाबा से दृष्टि लेने का 3-4 बार जो सौभाग्य हुआ और जो प्रश्न पूछने जाते थे बाबा तुरंत ही उसका उत्तर देते थे बिना प्रश्न पूछे हुए। धीरे धीरे संध्या का समय हुआ और रोज मुरली मधुबन में भी शुरू से 8:45 बजे लगभग चलती है रात्रि को, लेकिन उस दिन बाबा ने पहले ही एक भाई हैं जमुना प्रसाद भाई, उनको बुला के बोला कि भाई आज अनाउंस कर दो कि बाबा आज जल्दी क्लास कराएगा, और लगभग 6:30-7 बजे ही सबको अनाउंस कर दिया गया। सब भोजन करके आए और लगभग 7:30 बजे तक क्लास में आ गए और उसके बाद बाबा भी आए। बस उस दिन तो बाबा का बिल्कुल फरिश्ता सा रूप दिख रहा था, जैसे बस हवा में ही कोई चल रहा हो, बिल्कुल श्वेत। श्वेत तो हमेशा ही होता है, लेकिन मुखमंडल पर जो आभा थी वो एक बहुत ही विचित्र आभा थी। ایسا بالکل جیسے دیوی دیوتاؤں کے پیچھے بھی دکھاتے ہیں بھائی لائٹ کا تاج, تو ویسے تو ہم سبھی کو وہ پیوریٹی کا تاج ہے, بابا نے دیا ہے اس سنگم پر, لیکن اس دن کچھ وشیش ہی آبھاس ہو رہا تھا. جیسے جیسے بابا آئے کلاس میں بیٹھے, مرلی چلانی شروع کری, اور بس وہ آبھاس, کئی بار تو ہم آنکھوں کی پلکیں بھی کئی بار جھپکا کے دیکھا کہ بھئی یہ میرا ہمارا ہی تو وہ نہیں ہے, لیکن بابا نے یہ دکھایا. اور یہ ہم سب کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ جب ہم بھی دھیرے دھیرے کرماتیت اوستھا کو پراپت ہوں گے, اور جب بالکل کرماتیت اوستھا کے نکٹ ہوں گے, ہو گئی ہوگی, تو یہ جو بابا نے کہا ہے سرو گن سمپن سولہ کلا سمپورن, اس کا آبھاس ہمارے چہرے سے, ہماری پیوریٹی کا, ہر چیز کا آنے والے سب کو بہت اسپشٹ ریتی سے ہوگا. بابا نے مرلی چلانی شروع کری, مرلی چلائی, ویسے اکثر کر کے بابا کو کئی بار کھانسی آ جاتی تھی, اور ہنسی میں بابا کہا کرتے تھے دیکھو یہ کھانسی کون ہے, بابا کی فرینڈ ہے. میں شیو بابا کو کئی بار کہتا ہوں بابا اس کھانسی سے میرا پیچھا چھٹاؤ, یہ میری فرینڈ جو فاسٹ فرینڈ ہے اس سے سکھی اس سے پیچھا چھٹاؤ. تو شیو بابا کیا کہتے تھے, بچے یہ تو تمہارا حساب کتاب ہے, یہ تو تمہیں ہی چکتو کرنا ہے, اگر بابا تمہارے ساتھ کوئی اسپیشل فیور کرے گا تو بابا کے تو سارے بچے ہیں, ہر ایک کا حساب کتاب چکتو کرنا پڑے گا. تو جس کا جو بھی کرموں کا حساب کتاب ہے وہ اسے ہی چکتو کرنا ہے. جب برہما بابا کے ساتھ بھی کوئی اسپیشل کنسیڈریشن نہیں تو ہمارے آپ کے ساتھ تو کیا ہوگا, کسی کے ساتھ بھی نہیں. کرموں کا حساب ہر ایک کو چکتو کرنا, اس لیے یہ کبھی بھی جب شریر کے کرموں کا سمبندوں کا کوئی بھی حساب کتاب سامنے آئے تو وہ پکچر کو لے آئیں کہ بس جب بابا نمبر ون جس کے شریر کا آدھار لیا شیو بابا نے, انہوں نے بھی اپنے سارے کرم بھوگوں کا حساب کتاب چکتو کیا, تو مجھے بھی بہت خوشی خوشی اپنے سب کرم بھوگ چکتو کرنے ہیں. اور یہ من کے اندر بالکل سپشٹ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ جو بھی حساب کتاب چکتو ہو رہے ہیں, میں اپنی کرماتیت اوستھا کے اور نکٹ آتما آتی جا رہی ہے. بابا نے مرلی چلائی, لیکن اس دن کی مرلی کی یہ وشیشتا تھی کہ بابا کو ایک بار بھی کھانسی نہیں آئی, ایک بار بھی, جبکہ صبح سے لے کر دو دن سے بھی کچھ ایسی طبیعت ہو رہی تھی, سردی کے پیک دن تھے, جنوری کا مہینہ, ماؤنٹ آبو, لیکن ایک بار بھی کھانسی نہیں آئی. وہ اس بات کا سوچک ہے کہ جب کرماتیت اوستھا کو ہم پراپت کرتے ہیں تو شریر کے کرم بھوگوں کے اوپر ہمارا یوگ بل سمپورن ریتی سے وجے پراپت کر لیتا ہے, اور اس لیے ہم ہوونہار وجئی آتما تو ہیں ہی ہیں, کلپ کلپ ہم نے یہ وجے پراپت کی ہے. اسی لیے شریر کا کرم بھوگ کوئی بھی کرم بھوگ ہو, کیونکہ انتم کرم بھوگ یہ شریر کا ہی ہے, اور یہ شریر کے کرم بھوگ سے کیسے اس کی فیلنگ نہ آئے, آبھاس نہ ہو, اس کے لیے ساکار بابا نے ایک وشیش ابھیاس کیا تھا. بابا نے ابھی بھی مرلی میں کہا ہوا ہے, کچھ ورش پہلے اویکت مرلی میں کہا تھا, ابھی بچوں کے سامنے دو پیپر وشیش آنے ہیں. پیپر تو انیک بتائے ہیں, آتے ہی ہیں, پانچ وکاروں کے, پرانے سنسکاروں کے, پرکرتی کے تتوں کے, کچھ بھٹکتی ہوئی آتماؤں کے, آدھی آدھی انیک پیپر بابا نے بتائے ہیں, لیکن ورتمان سمے کے پرمان بابا نے کہا کہ دو پیپر وشیش آنے ہیں. پہلا پیپر یہ شریر کا پیپر, یہ ہر بچے کے سامنے انت میں بہت وکٹ روپ میں آنا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو یوان ہوں, سوستھ ہوں, مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے, نہیں, بچے کھچے جتنے بھی حساب کتاب ہوں گے وہ اس شریر کے دوارا ہی چکتو ہونے ہیں. اس لیے اس کے لیے بابا نے بتایا ہے, اور بابا کو یہ ابھیاس بہت پکا تھا. کیا एक सेकंड में इस शरीर में आना, ब्रह्मा बाबा का बता रहे हैं। शिव बाबा तो आके मुरली सुना के चला जाता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा एक सेकंड में देह में आए, जो भी देह से पार्ट बजाया वो होता था ड्यूटी, उसके बाद देह से न्यारे हो जाते थे। जब भी पार्टी को मिलना होता था, बाबा अक्सर करके तीन जगह पार्टियों को मिला करते थे, जब कुछ लोग ही होते थे, एक दो लोग, दो तीन लोग, तो बाबा अपने कमरे में भी मिल लेते थे। तब तो बाबा का कमरा बहुत छोटा था, अभी तो बड़ा है, लेकिन उस वक़्त जहाँ तक पलंग बाबा का और बाबा की गद्दी पड़ी हुई है, बस उतना ही बड़ा रूम होता था। समझ सकते हैं कितना छोटा रूम, बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े सब मकान बनाए, लेकिन बाबा को कई बार बच्चों ने बोला, बाबा आप फलाने बड़े कमरे में, नए कमरे में चले जाओ। बाबा कहते थे, नहीं बच्चे, देखो शिव बाबा जब पुरानी जूती पुराना ये तन लेता है, बाबा भी अपने पुराने कमरे में रहेगा। कितना त्याग, तपस्या, सेवा की मूर्ति बाबा। ये भी हम अपने में देखते चलें। और बाबा का ना शौचालय भी क्या था, इतने ठंडी के दिनों में भी ऐसा एक टाट का वो बनाया हुआ था, टाट बोरी का जैसे होता है, उसके ऊपर भी छत नहीं, आप समझो इतने ठंडी के दिन उसमें भी बाबा का वो ही शौचालय हुआ करता था जैसे। और वहाँ पर बस बाबा जाके, और बच्चों के सामने जो बाबा ने मिसाल पेश की है, वो देख देख के कई बार दिल और आंखें तो एकदम भर आते हैं। खैर, तो उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। फिर उसके बाद बाबा ने बच्चों को याद प्यार दी, और याद प्यार दे के बाबा उठ खड़े हुए। उठ के हिस्ट्री हॉल तो आप में से अधिकतर ने देखा होगा, शायद न भी देखा हो जो बिल्कुल पहली बार आए हैं। जब पांडव भवन में जाएंगे, हिस्ट्री हॉल देखना, बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा हॉल नहीं है, छोटा है, यहाँ से जितना ये पंखा है इससे दूर इतना ही दरवाजा होता था बाबा की संदली से लेकर वहाँ तक। बाबा खड़े हुए याद प्यार देके चलना शुरू किया, फिर बाबा खड़े हो गए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, एक एक बच्चे को दृष्टि दी। सामने थोड़ी 25-30 बैठे होंगे, ज़्यादा तो थे नहीं। फिर उसके बाद बहुत दृष्टि से भरपूर किया, और सामने ही बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी बैठे हुए थे। बार बार बाबा की दृष्टि दादी जी की तरफ आके बहुत देर तक दादी जी की तरफ रुक जाती थी, और बहुत देर तक दृष्टि रुकी रहती थी। जैसे अभी मैं क्लास सुन रहा था, जब आशा बहन बता रहे थे, बाबा ने पूछा था कि बच्ची अगर ये ब्रह्मा भी चला जाए तो तुम संभाल लोगी, तो दादी ने कहा हाँ, बाबा को विश्वास था। और इसीलिए बाबा बार बार, क्योंकि दरवाजे तक जाते जाते बाबा चार बार रुके, एक कदम आगे बढ़ते थे फिर रुक जाते थे, फिर बार बार सबको दृष्टि कुछ देते, दादी जी को फिर दृष्टि से शक्तियों से भरपूर करते थे, फिर बाबा एक कदम आगे बढ़ते थे फिर बाबा रुक जाते थे। फिर उस दिन बाबा को ये हो रहा था, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था थी, और जब कर्मातीत अवस्था होती है तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और जो भीष्म पितामह का गायन है जो हम लोगों ने सुना है, इच्छा मृत्यु का वरदान, तो बस कर्मातीत अवस्था हो गई और ये स्पष्ट प्रतीत होता है। तो बाबा एक एक कदम चलते हुए भी बार बार दादी जी को शक्तियों से भरपूर करके फिर एक कदम आगे बढ़ते थे। और बाबा को ये हो, आज मैं बच्चों को सब शक्तियों से, गुणों से संपन्न कर दूं। फिर दरवाजे के पास पहुंच करके बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने 33 वर्ष के तब तक के इतिहास में एक बार भी नहीं बोले थे। बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, अभी भी ये शब्द टेप में भरे हुए हैं। वो आप उस 18 जनवरी की साकार मुरली की कैसेट या सीडी लेंगे, उसमें ये पढ़ेंगे, ये सुनेंगे, की, किस प्रकार से बाबा ने कहा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कह के बाबा अपने कमरे की तरफ चले। उस दिन एक विशेष अनुभव हुआ। देखो जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो कैसे जो हम भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं, भक्त जो है भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, भक्तों के संकल्पों को भी पूर्ण करते हैं। 18 जनवरी उस दिन हम सम्मुख बैठ के मुरली सुन रहे थे, सुनते सुनते ही हमारे मन में एकाएक एक संकल्प आया। देखो है तो प्राइवेट संकल्प, लेकिन आप सबके सम्मुख सुनाते हैं कि किस प्रकार से जब कर्मातीत अवस्था होती है तो भगवान भक्तों के संकल्पों का जो गायन है। अब संगम युग में तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम ही द्वापर युग के बाद किस प्रकार से भक्ति करेंगे, और कहीं हमारे भी जड़ चित्रों की पूजा होगी, और कहीं जो हमारे इष्ट देव होंगे उनकी पूजा के लिए हम निमित्त बनेंगे। तो इस कारण से हमारे मन में एक संकल्प हुआ। बहुत दूर से आए थे उन दिनों हम, आसाम में पोस्टेड थे, तो बहुत दूर से कि बाबा कुछ और बोले हमारे लिए, हमारा लिए कुछ और शिक्षा दे। तो बस देखो वो तो कर्मातीत अवस्था के निकट आत्मा थी, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बाबा तक ये संकल्प पहुंचा होगा, और तुरंत ही बाबा ने हमारा नाम लेकर के बस मुरली में कुछ महावाक्य उच्चार दिए। देखो ये बच्चा मोहन है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम लोग भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे तो हमारे सामने बहुत आत्माएं आएंगी। जो भक्त आत्माएं हैं, दुनिया से दुखी आत्माएं हैं, साक्षात्कार की इच्छा रखने वाली आत्माएं हैं, तो हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी होगी। उस समय ये परिस्थिति नहीं होगी कोई आके मुंह से बोले, वर्णन करे, लेकिन इच्छा लेकर के आएंगे, मुझे दुर्गा का साक्षात्कार हो, दूसरा होगा कोई हनुमान का साक्षात्कार, तीसरा राम का, कोई कृष्ण का, अलग अलग जो जिसकी पूजा करता होगा उनके साक्षात्कार की इच्छा लेके जब हमारे सम्मुख आएंगे, कहने का मार्जिन नहीं होगा न सुनने का मार्जिन होगा, लेकिन हमारे मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या वाली, मन जीते जगत जीत वाली, कि उन सम्मुख आने वाली आत्माओं को हम उनके मन के संकल्पों को पढ़ के तुरंत उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकें, जो बाबा ने करके दिखाया उस दिन 18 जनवरी को। और ये स्थिति हम सबको लानी है, कर्मातीत स्थिति, और इसका हमने उन दो दिनों में बहुत भरपूर रीति से बाबा के सानिध्य में ये अनुभव किया। क्योंकि अनेकों आत्माएं जब अनेक इच्छा लेकर के आएंगी, हम उनके इष्ट देव हैं, अगर हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे साकार में यहां पर, तो फिर जब वो हमारी मूर्ति बनाकर द्वापर युग से मंदिरों में रखेंगे, हमारे आगे उनकी भीड़ की भीड़ लगी हुई होगी, तो हमारी मूर्ति कैसे उनकी जड़ इच्छाओं को पूर्ण करेगी अगर हमने चैतन्य में यहां पर उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया होगा। तो इसीलिए अभी हमारा यही कर्तव्य है जो आपको पहले भी क्लासों में बताया गया, हर आत्मा को, कोई भी आत्मा हो, उसको हम आगे बढ़ाते चलें। जो कल संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा, हर आत्मा के विशेष गुणों को देख के हम सबको भी एकता का सबूत देना है। बाबा ने जो जो बातें बताई हैं बिल्कुल बाबा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे उस दिन दिखा रहे थे। इस रीति से हमें जब हमारी भी ऐसी संकल्प हो जाएंगे, संकल्पों पर विजय, तो हमारे सामने जो भी आएगा शिव बाबा हमारे द्वारा उनको उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। अब उसे शिव बाबा तो दिखेगा नहीं, शिव बाबा तो साक्षात्कार की चाबी तो बाबा के पास ही है, यहां तक कि ब्रह्मा बाबा भी कहते थे मेरे पास नहीं है, ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं थी। तो हम, लेकिन हमारा तन देखने में आएगा हमारे भक्तों को, और जो दुनिया भर की आत्माएं आएंगी उन्हें तो हमारा तन देखने में आएगा ना, वो यही समझेंगे, ओहो हमारे सम्मुख आएंगे, हमारे नैन चैन, हमारे संकल्पों के ऊपर इतनी विजय हो चुकी होगी। बस उसके संकल्पों को पढ़ करके, जैसे शिव बाबा हमारे द्वारा उनके साक्षात्कार की और अनेक प्रकार की जो शुभ इच्छाएं होंगी उनको पूर्ण कर सकेंगे, और बस तभी ये निकलेगा। बाबा जो कहता है, वाह भगवान जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, वाह। क्योंकि जब ये देखेंगे हम, एक एक बच्चों के द्वारा ये साक्षात्कार होगा, तब वो यही द्वापर युग में इतिहास लिखा जाएगा, भगवान सर्वव्यापी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर एक में है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर हमारे द्वारा जब ये अनुभव होगा दुनिया को, और ये बस बाबा के द्वारा अनेकों को ने अनुभव किया, अभी भी हमारी दादियां जो बस बहुत पुरुषार्थ में सबसे आगे हैं, उन सब दादियों के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा, जब भी उनकी दृष्टि लेते हैं, उनके कुछ बोल सुनते हैं, कितनी आत्मा को तृप्ति का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है। और ये प्रत्यक्ष ब्रह्मा बाबा को देखा, और उसके बाद बाबा मुरली सुना के धीरे धीरे अपने कमरे की ओर गए, और दादी जी के जैसा कि आप सब जानते हैं, दादी जी के हाथ में हाथ रखते हुए, नैनों से नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। हमें भी ये उस दिन बाबा ने मुरली में एक दिन पहले ही बोला था, जब मधुबन में आते हो तो यहाँ बेहद में हो, घर में तो हदों में रहते हैं, यहाँ बेहद में हो तो हॉल की छत पर चले जाओ और वहां पर बाबा को याद करो, देखो बाबा क्या क्या अनुभव कराता है। तो 18 जनवरी की ये मुरली सुन के हम ऊपर चले गए, क्योंकि उस दिन जल्दी मुरली खत्म हो गई थी, और क्योंकि जल्दी शुरू हुई थी जल्दी खत्म हो गई थी, भोजन आदि सबने पहले ही कर लिया था। तो हम ऊपर टहल रहे थे, इतनी देर में ही जमुना प्रसाद भाई बड़ी तेजी से साइकिल पर बाहर गेट की तरफ जाते हुए दिखे। तो हमने पूछा, अरे इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई दादी जी मुझे भेज रहे हैं जरा डॉक्टर को बुलाने के लिए, और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और डॉक्टर को लेकर आने के लिए। तो हमें भी ये हुआ कि क्या है, हम भी गए नीचे उतरे और देखा, लेकिन बस दूर से ही देखा, कमरे के बाहर दादी जी का तो पीठ थी और सामने बाबा तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो ये दृश्य ना बाबा को देखा ना दादी जी को, लेकिन दादी जी की पीठ, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था और दादी जी के हाथ में बाबा का हाथ, और इस प्रकार से बाबा ने विदा ली। अब इन सब चीजों से और इसमें क्या देखा हम लोगों ने कर्मातीत अवस्था में, एक दो और विशेष बातों को, कि जब आत्मा जितना ये कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होती है ना, तो एक जो मैं बता रहा था शरीर का पेपर एक सेकंड में आने का, एक सेकंड में न्यारा होने का, तो बाबा से मिलने का पार्टी को टाइम दिया होता था कि भाई 10 बजे मानो बंबई पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे दिल्ली पार्टी, 11 बजे कलकत्ता पार्टी, लाइक दैट ऐसे समय दिया होता था। तो ब्राह्मणी जब आती थी बाबा के पास, तो बाबा या तो कमरे में मिलते थे, जो मैंने बताया 2-3 होते थे, जब कुछ ज़्यादा होते थे तो बाबा अपनी झोपड़ी में मिलते थे, जब 6-7 होते थे, और जब इससे ज़्यादा होते थे 15-20 बड़ी पार्टी, उस समय तो यही 15-20 की पार्टी बहुत बड़ी समझी जाती थी, तो तब बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो बाबा को ये ब्राह्मणी जाती थी, बाबा के सामने भी जाके जैसे खड़ी हो जाती थी, बस बाबा अपनी लगन में मगन होके बैठे हैं, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन बिल्कुल मस्ती में, शिव बाबा की याद में मस्ती में। ब्राह्मणी जाके जब कहती थी बाबा बाबा मैं ये फलानी पार्टी लेके आया, तो कई बार बाबा को जैसे ना एक झटका जैसा लगता था, यानी कि कोई ध्यान में नहीं होते थे, साक्षात्कार में नहीं, लेकिन देह से न्यारेपन की ऐसी अनुभूति थी बाबा की, तो जैसे आत्मा बस कॉन्शियसनेस इस शरीर में आके, और फिर बाबा हाँ बच्ची पार्टी को बुलाओ, पार्टी आते थे बैठते थे, बाबा मिलते थे और सब को ये हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, और बाबा का मिलने का तरीका भी बहुत विचित्र है। बस आपने देखा होगा मधुबन में गए और कई ऐसे, आओ बच्चे आओ आओ मीठे बच्चे आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस और बाबा की आंखों में वो चमक, और ये जैसे आवाहन आत्मा को हम चुंबक की तरह खींच के बाबा की बाहों में बच्चे चले जाते थे। जब गए सबसे बड़ी अनुभूति ये होती थी, विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे एक सेकंड में, क्योंकि बाबा ने अशरीरी विदेहीपन का आत्मा का इतना पक्का अभ्यास किया हुआ था, वो आप सबने पढ़ाई हुआ है, मैं आत्मा हूं जसोदा आत्मा किताब में, वो मैं वर्णन नहीं करता। तो हर जैसे ही बाबा की दृष्टि जाती थी अशरीरी हो जाते, विदेही हो जाते थे। फिर बाबा ऐसे करते थे, आओ बच्चे आओ आओ, हल्के से प्यार से बड़ा थपथपा के, आओ बच्चे आओ। तो हम लोग न चाहते हुए भी जैसे ना देह में, कोई आत्मा देह से अलग नहीं होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस जैसे विड्रॉ होकर विदेही हो जाते हैं। फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, फिर एक जाता था दूसरा आता था दूसरा, सब ये अनुभव करते थे। तो एक ये संदेश हम सबके लिए भी है कि हम सब लोगों को भी आत्मा का अभ्यास इतना पक्का हो जाना चाहिए कि जिस भी आत्मा को दृष्टि दें, जिस भी आत्मा के संपर्क में आए, वो आत्मा विदेही हो जाए, अशरीरी। बाबा चाहता है अब अनुभव कराना। बाबा कहते हैं बहुत सुना बहुत बोला, अब समय है अनुभव कराने का। और जब आत्मा, आज भी बाबा ने बोला ना, वरदान में भी था, साइंस पावर के ऊपर साइलेंस पावर की विजय तब होगी जब हरेक ये अनुभव करेगा। और अनुभव जब होगा सुख और शांति का, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के प्रतीक है, तो फिर वो तब दुनिया कहेगी हाँ साइंस पावर के ऊपर साइलेंस पावर की विजय हुई, वाह वाह के नगाड़े बजेंगे। तो अभी हम सब बाबा के इस वाह वाह के नगाड़ों के लिए तैयार रहें। बाबा हम सब के द्वारा जो भी चाहता है कराना, उसकी छोटी सी झलक ये आपको दिखाई कि किस प्रकार से बाबा साकार में थे और इसके द्वारा अनुभव होता था। अब दुनिया भी ये एक्सपेक्ट करती है हमारे से ये सब अनुभव करना, और हम लोग भी विश्वास रखें। कलप पहले भी हम विजयी बने थे, अभी भी बाबा विजयी बना रहा है और कलप कलप विजयी बनाता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।
ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा। कितने निराहंग।